सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्दियं मणुवमपत्थसौखमणवज्रं केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। यह धौला शास्त्र जो श्री वीरसेन आचार्य ने षटखंडागम के ऊपर टीका लिखी हुई है, षटखंडागम के कर्ता भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य थे और उनके उपदेश कर्ता धरसेन आचार्य थे। अभी हम यहाँ पेज नंबर 94 पर आ गए हैं। हमारा विषय भाव प्रमाण संबंधी चल रहा है, यानी ये जीव स्थान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जीव स्थान प्रमाण है ये हमने पहले स्थापित कर दिया है। तो ये प्रमाण है तो इसकी उत्पत्ति भी प्रमाण से हुई है, तो उसमें हमने द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से दो भेद देखे थे और भाव प्रमाण के 5 भेद देखे थे, याद है आपको? आभिनिबोध, आभिनिबोध भाव प्रमाण, श्रुत भाव प्रमाण, आगे अवधि भाव प्रमाण, फिर मन परे भाव प्रमाण और केवल भाव प्रमाण। उसमें से हमने कल मति भाव प्रमाण कहो या मति ज्ञान संबंधी बातें देखी थी, तो उसमें हमने निमित्त की अपेक्षा कितने भेद किए थे, 6 भेद, कौन से? 5 इंद्रिय और मन। ज्ञान की अपेक्षा मूल 4 जो भेद किए थे कौन कौन से? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह के हमने 2 भेद देखे थे, तेजुबे याद है? डॉक्टर नहीं याद? व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। तो उसमें से अव्यक्त कौन सा और व्यक्त कौन सा है? उल्टा बोले, व्यंजन अवग्रह है वो अव्यक्त है, वो पहले होता है और जब व्यक्त शुरू हो जाता है, यानी अपने ख्याल में आना शुरू हो जाता है, तब उसको अर्थावग्रह कहते हैं। तो व्यंजनावग्रह में कौन कौन सी इंद्रिया निमित्त होती है? कल आप थे? मन और चक्षु छोड़कर बाकी कौन से रहे? स्पर्शन इंद्रिय, करण इंद्रिय, ये 4 इंद्रियों के द्वारा जो होता है उसको हम व्यंजनावग्रह कहेंगे। और अर्थावग्रह में 6 होते, 5 इंद्रिया मन सभी होते हैं। तो अभी हम अर्थावग्रह की अपेक्षा से पहले भेद करेंगे, मति ज्ञान के भेद, यानी ज्ञान की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा और एक अपेक्षा लगाई थी, कौन सी? जो विषय जानने में आ रहा है उसकी अपेक्षा से भेद किए थे, तो उसकी अपेक्षा हमने 12 भेद किए थे। तो 12 में 6 पहले हमने देखे थे और फिर उसके अगेंस्ट हमने देखे थे, याद है आपको? बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव। अभी इसके अगेंस्ट, बहु के अगेंस्ट 1, बहुविध के अगेंस्ट 1 विध, क्षिप्र के अगेंस्ट अक्षिप्र। क्षिप्र का अर्थ याद है? शीघ्रता से जानना, और अक्षिप्र ने मंद, लंबे काल तक जानते रहना, उसको अक्षिप्र कहते। तो ये अनिश्रुत और उसके अगेंस्ट निश्रुत। अनिश्रुत में क्या समझना? एक भाग प्रकट है, बाकी तो अप्रकट है, फिर भी पूरे द्रव्य को जान लेना एक भाग के ऊपर से पूरे, और निश्रुत यानी पूरा ही प्रकट है उसको जान लेना, उसको कहते हैं निश्रुत। उसके पश्चात उक्त और अनुक्त, अनुक्त के उल्टा उक्त, यानी जो पहले किसी ने बताया नहीं, उसका वर्णन नहीं किया है और हमने जान लिया, उसको अनुक्त कहेंगे। और किसी ने उसको पहले डिस्क्राइब करके बताया है और फिर हमने जान लिया है, तो उसको उक्त कहते हैं। और ध्रुव और अध्रुव में क्या देखा था, ध्रुव ने क्या, हाँ वो ज्ञान वैसा का वैसा है, पदार्थ की बात नहीं, ज्ञान उस पदार्थ संबंधी ज्ञान लंबे काल तक वैसा का वैसा रहना उसको कहेंगे ध्रुव, और अध्रुव यानी उसमें हीनाधिकता होते रहना उसको कहेंगे अध्रुव। यानी विषय के संबंध में 12 भेद हुए। तो हम अर्थावग्रह संबंधी से ले लेंगे पहले, मति ज्ञान के हमको 336 भेद देखेंगे हम। तो अर्थावग्रह में 5 इंद्रिया मन निमित्त है, वो मूल 6 हो गया। उसमें अवग्रह इहा अवाय धारणा 4 प्रकार होते हैं, तो 6 × 4 24 हो गए। और उसमें 12 प्रकार यानी 12 विषय संबंधी 12 प्रकार के विषय है उसका ज्ञान, तो 24 × 12 288 हो गए। अब हमने एक प्रकार छोड़ा था, कौन सा, व्यंजनावग्रह। तो व्यंजनावग्रह में निमित्त रूप से इंद्रिया कितनी देखी हमने, 4। अभी उसमें ज्ञान के प्रकार कितने हैं, हाँ ज्ञान के प्रकार कौन सी, 4 नहीं, ये वो अकेला अवग्रह है, उसके आगे तो वो दूसरे अर्थावग्रह हो जाएगा, उसके तो भेद हमने ऑलरेडी काउंट कर दिए 288 में। तो ये मात्र अवग्रह समय, यानी एक ज्ञान के भेद तो एक ही है व्यंजनावग्रह, उसमें निमित्त भूत इंद्रिया 4, तो 4 × 4। अब इसमें 12 प्रकार के पदार्थ लगाना, तो 4 × 12 4 × 48। पहले हमने देखे थे 288 और अब देखिए 48, तो उसकी टोटल हो जाएगी 336। तो ये मति ज्ञान संबंधी ये कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन परमिटेशंस कहते हैं ना, तो ये 336 हो सकते हैं, उसकी चर्चा हमने कल विस्तार से की थी। श्रुत ज्ञान की जब बात आई थी तब हमने देखा कि मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना है मति ज्ञान के बाद उस पदार्थ का ज्ञान तो उसको छोड़ दिया और उसके द्वारा किसी अन्य पदार्थ का ग्रहण किया। आत्मा शब्द सुना, शब्द को छोड़ा और आत्मा को जानने लगे, तो क्या कहेंगे वो, श्रुत ज्ञान। ख्याल है, हमने शक्कर का उदाहरण लिया था, शक्कर शब्द सुना, उसमें तो कर्णेन्द्रिय निमित्त था, वो तो शब्द को जाना हमने, परंतु शब्द किसको बता रहा था, तो शक्कर पदार्थ को। तो शब्द को छोड़ा और पदार्थ को ज्ञान में पकड़ा, नहीं ख्याल है। हम कहेंगे चश्मा, तो हम वधारे जानवानो श्रुत ज्ञान नहीं, बीजा पदार्थ ने जानवो ये श्रुत ज्ञान छे। आजो हम विल रीड द डेफिनेशन, 94 पेज पर दूसरा पैराग्राफ है, जिसमें जिस ज्ञान में मति ज्ञान कारण पड़ता है, यानी मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान उसका कार्य है, यानी मति ज्ञान पहले होता है उसके पश्चात श्रुत ज्ञान होता है, तो उसमें क्या कहता है, मति ज्ञान से ग्रहण किए पदार्थ को छोड़कर, मति ज्ञान से जिस पदार्थ को ग्रहण किया यानी जाना, उसको जाना उसको छोड़ा भी, और क्या किया, तत्संबंधित दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है। तत्संबंधी दूसरा पदार्थ है ना, हमने शब्द जाना, और तत्संबंधी दूसरा पदार्थ, मैंने शक्कर का उदाहरण दिया, अभी चश्मे का उदाहरण दिया, हमने तो शब्द सुना है। जब मति ज्ञान का विषय क्या था, शब्द था, हमने शब्द इस विषय को छोड़ दिया और वो शब्द जिसको सूचित कर रहा था उस पदार्थ को जानने लगे। यानी अभी हमारा ज्ञान का विषय हुआ शक्कर नाम का पदार्थ, नहीं समझे, विशेष पहले आपने क्या जाना था, शक्कर को नहीं जाना था, शक्कर ना शब्द को जाना था। पहला शक्कर पदार्थ को जाना था क्या, मति ज्ञान से क्या जाना था, शब्द जाना था, यह वहाँ लिखा था शक्कर अक्षर को जाना, यानी चक्षु इंद्रिय द्वारा अक्षर पढ़े अक्षर को जाना, या कर्णेन्द्रिय के द्वारा शब्द को सुना, तब हमारे ज्ञान का विषय क्या था, शब्द था, शक्कर नहीं था। और वो जानने के पश्चात वो शक्कर हमारे ज्ञान में आ गई, क्योंकि हम हमें मालूम नहीं इसको शक्कर कहना। अभी छोटा बच्चा है जिसको शक्कर क्या है मालूम नहीं है, तो उसने तो खाली शक्कर शक्कर इतना सुना, तो उसके ज्ञान का विषय तो शक्कर ये शब्द हुआ। उसके ज्ञान में आगे वाला वो शक्कर पदार्थ नहीं है, क्योंकि हम बार बार बच्चों को कहते हैं ये इसको पेंसिल कहो, इसको नाक कहो, इसको आँख कहो, तो वो फिर कोऑर्डिनेशन होता है। हाँ ये आँख ऐसा शब्द सुने तो ये है आँख, आँख शब्द सुना वो मति ज्ञान का विषय, और फिर इसको हमने जाना तो ये शुद्ध ज्ञान का विषय, ख्याल है ना। और एक इंद्रियों में भी हमने देखा था, एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि में उसको तो स्पर्श का ज्ञान हुआ, और ये अपने को हितकारी है या अहितकारी है ये उसको ज्ञान हुआ, ये उसका शुद्ध ज्ञान है। इसको फिर पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन। जिस ज्ञान में मति ज्ञान कारण पड़ता है, जो यानी जो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से ग्रहण किए पदार्थ को छोड़कर तत्संबंधी दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है, यानी दूसरा पदार्थ जानने लगता है, और श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभश्रम से उत्पन्न होता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब जो जो नाम है ज्ञान का, उस संबंधी जो आवरण है उसका वहां क्षोभश्रम होता है, उदय होता है नहीं कहा, आवरण का उदय होता है कहेंगे तो वो ज्ञान ढक गया कहेंगे, ख्याल है ना। तो यहाँ तो क्षय होता है नहीं, अभी तो क्षयोपशम चलता है। अब आगे, अब हमने अवधि ज्ञान संबंधी जानना शुरू किया था, अवधि भाव प्रमाण की बात यहाँ चल रही है। तो अवधि ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा, परंतु वो पूरा प्रत्यक्ष नहीं है, सकल प्रत्यक्ष नहीं है जैसे केवल ज्ञान है। तो कल बात आई थी नियम सार में आई थी, तो प्रत्यक्ष किसे कहना, तो जो सभी पदार्थों को, स्व और पर सभी पदार्थों को, यानी इस विश्व में जितने पदार्थ है उन सभी के द्रव्य गुण और पर्यायों को समस्त रूप से जानता है, स्पष्ट जानता है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या अवधि ज्ञान समस्त पदार्थों को जानता है? हाँ, खाली रूपी पदार्थों को, छह द्रव्य में से अकेला रूपी पदार्थ पकड़ा, और रूपी पदार्थ में भी अवधि यानी मर्यादा सहित जानता है, द्रव्य की मर्यादा, काल की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को जानता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि का ही अर्थ होता है मर्यादा, मर्यादा सहित जाने, उसमें भी इंद्रिया या मन निमित्त नहीं होता और वो कुछ पदार्थों को जानता है, इसलिए उसको कहा प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान भी बिना इंद्रियों का डायरेक्ट जानता है और सभी पदार्थों को जानता है, इसलिए उसका नाम है सकल प्रत्यक्ष।
देखो, हम जब अवधि ये शब्द को देखते हैं तो मान लीजिए कि आपने घर में अपना कोई प्रिय व्यक्ति का मरण हो गया, तो बस काल ही यानी काल अवधि इसका उपाय है, कालांतर से यानी काल अवधि कहेंगे, या आप दवा लेने जाते हैं तो उसका अवधि कितनी, वो एक्सपायरी डेट कितनी, वो अवधि हो गए। इस तरह हम जो अवधि देखते हैं उसका अर्थ ही होता है कि मर्यादा। ये हम अलग अलग प्रकार से लौकिक में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ अवधि का ही मतलब लेना कि मर्यादा सहित का ज्ञान, और मर्यादा कैसा है वो तो आपको बता दिया अभी।
तो प्रत्यक्ष का अर्थ हमने देखा, सबको जाने और बिना इंद्रिय और मन के निमित्त से जाने। अब इसको फिर पढ़ते हैं नीचे का पैराग्राफ 94 पेज पर। देखो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से यानी भेद से अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य को जो प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा जघन्य रूप से जानता हुआ, यानी जघन्य में जघन्य कितना जानेगा, तो हमने जब द्रव्य की अपेक्षा से जब कहते हैं तो नंबर ऑफ परमाणु लेना, कहीं भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा लगती है तो द्रव्य ने उसकी संख्या, पदार्थों की संख्या, उसको द्रव्य कहेंगे। क्षेत्र यानी कितने क्षेत्र तक जानता है उसको क्षेत्र कहेंगे, अभी यहाँ अवधि ज्ञान में। काल यानी वर्तमान छोड़कर बाद का और पहले का, अतीत और अनागत, कितना काल तक जानेगा उसको उसका काल कहेंगे। और भाव यानी जो जाने हुए पदार्थों का जो भाव है, उसके जो गुण है, उसकी जो पर्याय है, उस संबंधी उसको भाव कहते हैं। तो अभी ये जघन्य, हमको जघन्य कितना है, जघन्य में जघन्य जो अवधि ज्ञान है वो कितना द्रव्य जानता है, कितना द्रव्य जानता है का अर्थ है कितने नंबर ऑफ परमाणुओं के स्कंध को जानता है, या कितने, उसकी लिमिट कितनी है, छोटे में छोटे, बड़ा तो कोई भी जानेगा, इतना बड़ा तो सब जानेंगे, परंतु छोटे में छोटे कहाँ तक जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये उसकी लोअर लिमिट इतनी है, अवधि ज्ञान के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा की बात नहीं है, मन के द्वारा की बात नहीं है, मन के द्वारा तो हम कहाँ तक जान सकते हैं, परमाणु को भी जान रहे कि नहीं जान रहे। मन के द्वारा तो हम सबको जानेंगे, परंतु अवधि ज्ञान के द्वारा वो कौन सा उसका स्कंद ऐसा उसके ज्ञान में आ रहा है। तो हमने देखा जो जघन्य अवधि ज्ञानी मान लेते इतने बड़े स्कंद को जानता है, इससे बड़े को जानेगा ही जानेगा, परंतु उसके लोअर लिमिट कौन सी है, यहाँ तक को जानेगा, यहाँ तक के द्रव्यों को जानेगा, इतने बड़े स्कंद को जानेगा। तो हमने वो कौन सा स्कंद देखा था, हाँ, यानी जो शरीर की कम से कम अवगाहना है, जो लब्धि अपर्याप्त निगोद जीव को उसकी जो शुरू होगी उसकी लाइफ उसके तीसरे समय में, आयु यानी शरीर ग्रहण के तीसरा समय कहा हुआ, शरीर ग्रहण के तीसरे समय में जो उसकी अवगाहना होती है, देह का जो माप है उसका यानी साइज है, उतने साइज के स्कंदों तक को वे जानते हैं, उसके उससे छोटे स्कंदों को नहीं जानेंगे, बड़ों को जानेंगे, उसमें कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि जब हमने आँखों का एग्जाम्पल देखा था कि आईसाइट हमको चेक करनी है, आँखों की रोशनी कितनी है, तो वो हम लेटर्स पढ़ते हैं, हम तो छोटे में छोटा कहाँ तक पढ़ सकते हैं वो हम उसकी लिमिट कहेंगे, जो वहाँ तक पढ़ता है वो तो बड़ा तो पढ़ेगा ही। वैसे जघन्य अवधि ज्ञानी का जो द्रव्य का प्रमाण है वो हमने कितना देखा था, वो सूक्ष्म निगोद लब्धि, या दूसरे पद्धति से उसको वर्णन करना है तो इसमें क्या लिखा है, देखो तीसरे लाइन में, कि एक जीव के औदारिक शरीर के संचय के, यानी एक जीव का जो औदारिक शरीर का जो कुछ परमाणु का नंबर ऑफ परमाणु है टोटल अभी सत्ता में पड़े है वो सब ले लेना, संचय ने अभी इकट्ठा किया हुआ, जन्म से हर समय में औदारिक शरीर के परमाणु का ग्रहण होता चला जाता है और उसमें से कितने ही चले जाते हैं, वो हर समय में कितने आते हैं कितने जाते हैं, आपने सब उसके गणित भी पढ़ा है, उसका हमने बहुत डिटेल से वर्णन भी देखा है जीव कांड में। तो इसको संचय कहते हैं कि अभी कितने हैं हमारे साथ, तो जो कुछ है तो उसको संचय का, तो वो उसके टुकड़े करने, हमको खंड खंड करने हैं, तो कितने करने हैं, 10 करने के 20 के 10 100 करने, कितने करने हैं, तो लोकाकाश की जो संख्या है, लोकाकाश के प्रदेशों की जो संख्या है, असंख्यात है, तो उतने हमें खंड करना है, तो उतने खंड करने पर एक खंड कितना बड़ा होगा, वो सूक्ष्म लब्धि निगोद अपर्याप्त की बात की, उतना बड़ा होगा एक एक खंड, तो लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण खंड पर करने पर उसमें से एक खंड तक को जानता है, यानी इतने छोटे तक को जानेगा, उससे छोटा कोई होगा स्कंद उसको नहीं जानेगा। अब उत्कृष्ट रूप से यानी जो उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी है उसका अभी साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। अवधि ज्ञान जिसका कम पावरफुल है वो यहाँ तक के जानता था, ये हमने चौक तो ये यहाँ तक के स्कंद को जानता था। अब जो उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी है वो इससे भी छोटे को जानेगा, तो उसका क्या लिमिट है, तो परमाणु तक को जानता है। अभी उससे छोटा कुछ होगा क्या नहीं होगा, एक प्रदेश है ना परमाणु, और परमाणु तक को जानते हैं, यानी वो लोअर जो मैक्सिमम लिमिट है वो सब जानते हैं। तो उत्कृष्ट रूप से अर्थात उत्कृष्ट अवधि ज्ञान एक परमाणु तक को जानता है, हाँ, यानी उसके मैक्सिमम अवधि ज्ञान मैक्सिमम और द्रव्य मिनिमम, यानी एक द्रव्य तक को यानी एक परमाणु तक को जानते हैं, छोटे एक से छोटा कुछ है ही नहीं, एक को जानते हैं, और वहां तो अनंत परमाणुओं के स्कंद तक को जानते थे। ये द्रव्य में ऐसा उल्टा, अभी क्षेत्र में तो जितना अवधि ज्ञान पावरफुल वहां लंबे क्षेत्र तक दूर तक उनका ज्ञान चलेगा। अब क्षेत्र की बात आती है, ये जघन्य उत्कृष्ट बताया, अब उसके बीच वाले जो मध्यम है, या तो उसको मध्यम कहो या अजघन्य अनुत्कृष्ट कहो, जो उत्कृष्ट नहीं है, मध्यम का उत्कृष्ट की तरफ का जो भेद है उसको अनुत्कृष्ट कहे, अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, और जघन्य की तरफ के जो भेद है, जघन्य नहीं है उसको अजघन्य कहेंगे। तो अजघन्य और अनुत्कृष्ट अर्थात मध्यम अवधि ज्ञान जघन्य और उत्कृष्ट के अंतरालगत द्रव्य भेदों को जानता है, यानी जो मध्यम अवधि ज्ञान है, हमने देखा था कि ये जघन्य अवधि ज्ञान का इतना, अभी हमने फॉर एग्जाम्पल ये चौक जितना हमने लिया, और उत्कृष्ट एक परमाणु तक को लिया, और मध्यम अवधि ज्ञान इन बिटवीन, अभी इसे छोटा 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 एक परमाणु तक जाओ आप, तो उतना उसका द्रव्य का प्रमाण को जानेंगे। अब क्षेत्र की अपेक्षा विचार करते, देखो क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान जघन्य में जघन्य कितने क्षेत्र तक को जानता है, तो वहां कहा कि अंगुल के असंख्यात विभाग, उसका नाम वहां लिखा उच्छेदांगुल के असंख्यात विभाग क्षेत्र को जानता है। तो ये उच्छेदांगुल क्या है उसकी हमने कल चर्चा की, शब्द नए इसलिए थोड़ा रिपीट करते, अंगुल यानी ये उंगली, उसकी विड्थ जो है चौड़ाई, उंगली की चौड़ाई उसको अंगुल कहते हैं। तो ये तो हम देखते हैं ना, कोई आदमी छोटा है बड़ा है बच्चा है तो उसके विड्थ कम है बड़े की ज्यादा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, तो उसके लिए माप शास्त्र में बताया। तो अनंतानंत परमाणुओं के स्कंद को अवसन्नासन्न कहते हैं। अब इसके आगे 12 नाम कहूंगी मैं, तो वो 8-8 गुणे हैं, कल मैं गलती से 12-12 गुणे बताया था, ये 8-8 गुणे आगे के हैं, यानी उसका अर्थ क्या होता है, 8 अवसन्नासन्नों का एक सन्नासन्न होगा, 8 सन्नासन्नों का एक त्रुट रेणु होगा, उसके आगे वाला त्रस रेणु, फिर रथ रेणु, उसके बाद उत्तम भोग भूमि वालों का बाल का अग्रभाग, वो भी न्यू बॉर्न का हम देखते हैं, बाल का अग्रभाग भी बहुत छोटा होता है, वो टीवी पर देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, नीचे बड़ा है और फिर एकदम ऐसा पॉइंटेड, हाँ, तो ये आगे वाला लास्ट पॉइंट लेना उसका, उससे 8 गुना जाड़ा मध्यम भोग भूमि वालों के बाल का अग्रभाग होगा, उससे 8 गुना जाड़ा ऐसा जघन्य भोग भूमि वालों के बाल का अग्रभाग, उससे 8 गुना कर्म भूमि वालों का बाल का अग्रभाग, फिर उससे आगे 8 गुना लीक, उससे आगे 8 गुना सरसों, फिर उससे 8 गुना आगे यव, यव नाम का धान होता है, अनाज होता है, और उससे 8 गुना अंगुल। इस तरह से जो अंगुल हमने डिराइव किया है, क्या 8 गुना है, कल भी दो बार, कल 3-4 बार बताया, आज भी, हाँ हाँ, 8-8 गुना है। तो ये जो अंगुल हमने अभी देखा है उसको कहते उच्छेदांगुल। अवसर्पिणी के प्रथम चक्रवर्ती के जो अंगुल है उसको कहेंगे हम प्रमाणांगुल। अब हर काल के जो अपना अपना अंगुल की विड्थ अलग अलग होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्सर्पिणी के चौथे काल में शुरू में जो होगा बाद में वो हाइट बॉडी वो सब कम हो जाते हैं, तो अंत में जब महावीर स्वामी का समय आ गया तब वो तो शरीर की रचना छोटी छोटी होती गई, तो अंगुल भी छोटा होगा। अभी पांचवे काल वालों का तो उससे भी छोटा, तो उसको कहते हैं आत्मांगुल, अपना अपना अंगुल। तो अभी यहाँ किसकी बात की है, उच्छेदांगुल के असंख्यात विभाग तक क्षेत्र, ये उसकी मिनिमम लिमिट है, यानी सबसे कम अवधि ज्ञान है तो इतने क्षेत्र तक को जानेगा, वहां तक के पुद्गल परमाणुओं को जानेगा, क्षेत्र को जानेगा का अर्थ होता है इतने क्षेत्र में स्थित पुद्गलों को जानेगा, उसमें भी उतने क्षेत्र में स्थित। अभी जघन्य अवधि ज्ञानी होगा तो उतना वो जो उसका स्कंद की लिमिट है वहां तक के स्कंदों को जानेगा, बड़े स्कंदों को तो बड़ों को जानेगा। अभी उत्कृष्ट से यानी जो अवधि ज्ञान की उत्कृष्ट लिमिट है कितने क्षेत्र तक के पुद्गलों को जानेंगे, तो उसका लिमिट क्या है, असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को जानता है। पुद्गल कितने क्षेत्र में स्थित है, लोकाकाश में ही है, अलोकाकाश में तो अन्य कोई द्रव्य है ही नहीं आकाश के सिवा, फिर भी यहाँ लिमिट क्या लिखी, असंख्यात लोक। इसका अर्थ उनका ज्ञान तो इतना पावरफुल है, ऐसे असंख्यात लोक होते या एक लोक से भी असंख्यात गुना बड़ा ऐसा जो क्षेत्र है वहां तक के क्षेत्र तक जानने की इनकी कैपेसिटी है। अभी वहां पुद्गल नहीं तो क्या, कैपेसिटी तो है ना ज्ञान में, जैसे केवल ज्ञान की कैपेसिटी कितनी है, अनंतानंत लोकालोक होते, खाली लोक नहीं लोकालोक, अनंतानंत लोकालोक है तो उसको भी जानने की शक्ति केवल ज्ञान में है। अभी लोकालोक तो एक है तो इसलिए ऐसे कहने में आता है वो तो लोकालोक पूरा केवल ज्ञान के एक खूने में जानने में आता है, यानी उसके अनंत विभाग में जानने। अब अजघन्य और अनुत्कृष्ट यानी मध्यम अवधि ज्ञान जघन्य और उत्कृष्ट के अंतरालगत क्षेत्र भेदों को जानता है, यानी उसके इन बिटवीन जो कुछ लिमिटेशंस है। अभी हमने कहां से शुरू किया था, अंगुल के असंख्यात विभाग, तो हो दूसरा कोई होगा एक मील के एक माइल के एरिया तक जानता है, कोई 25 माइल तक, कोई पूरे हिंदुस्तान के इतना जानेगा, कोई पूरा अभी पृथ्वी की जानेगा, कोई और भी अन्य जो अन्य क्षेत्रों के विधेय क्षेत्र तक को जानेगा, इससे अलग अलग। अब काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण भूत और भविष्यत पर्यायों को जानता है। आवली में कितने समय है, असंख्यात समय है, कितने असंख्यात है, हाँ जघन्य युक्ता संख्यात, ये उसका माप है। असंख्यात है इतना याद रखो, जिसको युक्ता संख्यात क्या है मालूम नहीं है तो ये तो आवली में असंख्यात समय होते हैं, और ऐसी सैकड़ों आवली एक सेकंड में होती है, यानी आवली छोटा माप है और उसका भी असंख्यात भाग करो तो बहुत अल्पकाल है। तो ये जघन्य अवधि ज्ञानी वाला थोड़ा यानी अभी इतने आगे का जानेगा। कभी कभी ऐसा लगता है अरे ऐसा होने वाला है, नहीं मुझे ऐसा लगा था हुआ होने वाला है, उसको अवधि ज्ञान नहीं कहेंगे, वो तो अनुमान ज्ञान भी हो सकता है, परंतु अवधि ज्ञान वाले को ये भी ऐसे होने से पहले ही ऐसा पता चल जाता है अवधि ज्ञान के द्वारा, और भूतकाल की भी अवधि ज्ञान अवधि से जानता है। ये हमारे साथ क्या बीता हम जानेंगे उसकी विशेषता नहीं है, ये किसकी बात चल रही है, रूपी पुद्गल को जानता है तो ये तो जो बीत गया है उस संबंधी भी जानेगा, वर्तमान संबंधी जानेगा और उसकी काल की लिमिट आगे भी चलेगी। तो जघन्य में जघन्य आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण भूत और भविष्यत पर्यायों को जानता है, और उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण समयों में स्थित अतीत और अनागत पर्यायों को जानता है। क्या कहते हैं, लोक प्रमाण समय लिखे, लोक में जितने प्रदेश है उतने समय लेना, क्या लेना, ये तो जहां जिस अपेक्षा से कथन किया है तो लोक में असंख्यात समय होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं और उतने समय लेना हमको, और ऐसे एक लोक प्रमाण नहीं लेना, असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्यात लोक प्रमाण समयों में स्थित, कहीं कहीं ऐसा भी आता है असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात कल्पकाल पीछे का, असंख्यात कल्पकाल आगे का, वहां तक उनका अवधि ज्ञान चलता है। अतीत और अनागत पर्यायों को जानता है। ये जो मध्यम वाला है अजघन्य और अनुत्कृष्ट मध्यम अवधि ज्ञान जघन्य और उत्कृष्ट के अंतरालगत, अंतरालगत यानी बीच वाले, इन बिटवीन वाले काल भेदों को जानता है। भाव की अपेक्षा अवधि ज्ञान पहले निरूपणा किए गए द्रव्य की शक्ति को जानता है, यानी जो उसने पुद्गल द्रव्य को जाना है उसकी शक्ति को वो जानते हैं, भाव को जानते हैं, नहीं पुद्गल का भाव क्या है, पुद्गल की जो शक्ति है उसको जानते हैं। काल क्या होता है? काल भेद, यानी हमने क्या देखा, जघन्य कितना है, अभी हम मान लेते हैं कि एक मिनट है समझने के लिए, और उत्कृष्ट कितना है तो 100 साल तक की जानते हैं, तो बीच वाले जो काल भेद कितने हैं, हमने मिनिमम कितना समझा था अभी, एक मिनट, तो एक मिनट एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, ऐसे 100 साल के एक समय कम वहाँ तक के जो अलग अलग जो है उसको काल भेद कहेंगे। अवधि ज्ञान की जितने वेरिएशन है, हमने जघन्य वाला कितना जानता है उसको हमने बता दिया, उत्कृष्ट वाला कितना जानता है उसको बताया, और मध्यम वाले जो अवधि ज्ञान के भेद है वैसे काल के भी मध्यम भेद होंगे। यह अवधि ज्ञान का पूरा हो गया। अब मन पर ज्ञान की बात है, जो दूसरों के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को, अभी इसमें कंडीशंस क्या है, दूसरों के मन की बात जानते हैं परंतु दूसरे के मनोगत यानी मन में जो है जो विचार कर रहा है वो मूर्तिक द्रव्यों को, मूर्तिक द्रव्य संबंधी जो उसके मन में विकल्प चल रहे हैं उनको उस मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है, मन को भी जानता है, उस मन के साथ जानता है। देखो, दूसरों के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को उस मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है, उसे मन पर ज्ञान कहते हैं। नहीं जानेगा, आत्मा के भावों को नहीं जानेगा, आत्मा संबंधी विकल्पों को भी नहीं जानेगा। हाँ, परद्रव्य संबंधी, जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी घर में जाके मैं खाना खाऊंगा या मेरा दोस्त मुझे मिलने आने वाला है, तो ये उसमें दोस्त यानी वहाँ वो द्रव्य भी आए ना, पुद्गल शरीर रूप से भी आता है, तो आपके मन में क्या चल रहा है वो जानेंगे। खाली अभी क्या चल रहा है ऐसा नहीं, पहले क्या चल चुका है या अगले भव में क्या सोचोगे, यहाँ तक के जानेंगे। हाँ नहीं, ये मनपरे ज्ञान डायरेक्ट, हाँ इसको अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है। मनपरे ज्ञानी जीवों को अवधि ज्ञान होगा भी या नहीं भी होगा, हाँ इनकी भी लिमिट है, इनकी भी लिमिट है, यहाँ तक तो उनका उत्कृष्ट क्षेत्र भी मनुष्य लोग उतना ही है, उससे ज्यादा को भी नहीं जानेंगे। मन में आत्मा संबंधी क्या विचार चल रहे हैं वो उसको नहीं जानेंगे, रूपी संबंधी अभी व्यापार संबंधी क्या विचार कर रहे हैं, घर गृहस्थी संबंधी क्या विचार चल रहे हैं आपके, दोस्तों संबंधी क्या विचार चल रहे हैं, क्या आपको प्लानिंग चल रही है कि कहाँ जाना है कैसे करना, समझो व्याख्यान की प्लानिंग है उस संबंधी आएगा, या अभी वो ओसामा बिन उसने वो कैसे वो टावर गिराया, तो वो कब उसने वो प्लान किया था, या पूर्व भव में जानेंगे कि आगे भव में जाके ये जीव ऐसा सोचेगा, अभी 10 भव के बाद क्या होने वाला उस जीव को भी पता नहीं है, तो ये जानेंगे ये जीव 10 भव के बाद ऐसा सोचेगा। यानी जितना पावरफुल मनोपर्य है उसके भी भेद बहुत है। नहीं, अवधि ज्ञानी के द्वारा, अवधि ज्ञान के द्वारा जान सकेंगे, अवधि ज्ञानी जानेंगे, मन पर ज्ञान के द्वारा नहीं जानेंगे वो। हाँ
देखो,
उनके मन में कौन से विचार चल रहे उतना ही उसका विषय है।
देखो पहले हम एक बात देखते हैं, भाई साहब एक मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ जरा समझ लीजिए। देखो किसी को एक साथ 2 ज्ञान मिनिमम होंगे, किसी को 3 ज्ञान होंगे, 3 में 2 उसमें ऑप्शन है, या तो मति श्रुत अवधि, या तो मति श्रुत मनपर्य, चौथा 4 ज्ञान एक साथ, और 5वां 1 ज्ञान एक साथ, केवल ज्ञान। अब जो मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी ऐसा कोई मुनिराज होंगे तो वो जिस अवधि ज्ञान लगाएंगे तो जानेंगे कि भाई अभी इसके कर्मों के इतना अभी ये बाकी है, उसके ऊपर से वो लब्धि में है कि नहीं ये जानेंगे। लेकिन मन में स्थित तो उनके तो आत्मा के संबंधी विचार है, केवल मन परे ज्ञानी होगा वह जीव यानी मुनिराज जो है, तो वो तो उनके परिणाम को नहीं जानेंगे। जैसा हमारे अश्विन भाई ऐसा गए तो मुनिराज सामने बैठे तो ये पूछने गए तो उन्होंने लगाया हाँ ये तो एक घर खरीदना है इनको, तो उसके बारे में सोच रहे, तो वो समझेंगे क्योंकि उनके क्या मन में है कि हमें घर खरीदना है, हमें व्यापार खरीद करना है, हमें कुआं खोदना है, जो भी है वो तो मन में जो पौद्गलिक विचार चल रहे पुद्गल के बारे में वही मन पर ही ज्ञानी जानेगा। आत्मा का अनुभव कोई करता होगा तो वो मन पर ही ज्ञानी नहीं जानेगा, उल्टा अवधि ज्ञानी जानेगा कि इसके इतने कर्म कम हो गए हैं तो अभी उसके ये स्टेज हो सकती है। इसलिए तो हाँ अवधि ज्ञानी जान सकते मन पर ये ज्ञानी पौद्गलिक बातों को ही यानी उनके मन में जो विचार स्थित है। देखो यहाँ लिखा है पूरा क्या लिखा है, दूसरों के मनोगत यानी मन में जो आगत आए हुए मन में आए हुए मूर्तिक द्रव्यों को उसके बारे में जानेंगे, ये मन पर ये ज्ञानी की बात है। हाँ सर, हाँ नहीं नहीं ये एग्जाम्पल के लिए मनुष्य सामने होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर ऐसे मुनिराजों को कहाँ विकल्प आए कि दूसरे मन में क्या चल रहा है, वो तो अपने स्वरूप में स्थित होंगे, ये तो समझाने की बात है।
हाँ
बिल्कुल जानेंगे क्योंकि मदर जो है वो तो पुद्गल जो है उसको ही मदर जान रहे हैं ना, आत्मा को तो मदर कोई कहेगा ही नहीं, ये तो नक्की है ना।
देखो यहाँ क्या कहते हैं, कहा मैं दूसरे पुस्तक में से पढ़कर सुना रही समय ज्ञान चंद्रिका में से, त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को वर्तमान काल विषय कोई जीव चिंतवन करे, पुद्गल द्रव्य संबंधी चिंतवन चल रहा है तो उसको जानेंगे। वो पुद्गल द्रव्य भले अभी वर्तमान में हो या भविष्य काल में उसका जो कुछ प्लानिंग हो या उसने पूर्व में जो कुछ अनुभव किया है देखा हुआ है या जो कुछ चल रहा है, अभी समझो मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा यात्रा की थी तभी तभी ऐसे ऐसे भगवान की मूर्तियाँ थी बहुत अच्छी थी वगैरह वगैरह जो कुछ है, तो वो जान सकेंगे है ना। और त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को अतीत काल में वर्तमान काल में वो सब बातें और भी है कि मन परे ज्ञान उसमें उस मुनि के द्रव्य मन वहाँ निमित्त है, जैसे मति ज्ञान में मन है वैसे मन परे ज्ञान में भी अन्य प्रदेशों से वो उत्पन्न नहीं होता है, अन्य अंगों से उत्पन्न नहीं होता, वो उत्पत्ति स्थान उसका मन है, द्रव्य मन है, और वो दूसरों के मन में स्थित पदार्थों को जानते हैं। अभी यहाँ पढ़ेंगे अभी हम मूल, उसके बहुत डिटेल्स है, शायद आगे भी आएंगे, ये ज्ञान मरगण में सब आने वाला है, अभी तो बिल्कुल स्थूल चर्चा है यहाँ। जब ज्ञान मार्गणा का प्रकरण होगा तो हर एक एक ज्ञान के भेद उसके प्रकार उसके डिटेल सब आएंगे। नहीं नहीं भूतकाल में भी सोचा था नहीं, आप यदि भूतकाल संबंधी पुद्गलों को जान रहे सोच रहे हैं, आप अपने बचपन के किसी घर की याद कर रहे हैं तो उसको भी जानेंगे, या आपने गए भाव में क्या विचार किया था उसको भी जानेंगे, सामने वह उसको मालूम नहीं, आप 10 भाव बाद क्या सोचने वाले हैं वो भी जानेंगे। हाँ वो वर्तमान में जानेंगे वे कि यह जीव अगले भाव में ऐसा सोचेगा, ये भी हाँ ये मनोपरी नहीं नहीं वो भविष्य में क्या विचार करेगा। हाँ ये हमें भी पता नहीं है कि हमारे ऐसे विचार की कभी नहीं है, फिर वो क्या कहने ये भविष्य में ऐसा सोचेगा, ये मन परे ज्ञानी। देखो यहाँ से पढ़ते, दूसरों के मनोगत मनोगत यानी मन में जो विचार चलते हैं, मूर्तिक द्रव्यों को उस मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है, यानी दूसरे के मन को भी जानता है और उनके मन में स्थित पदार्थों को, रूपी पदार्थों को भी जानता है, उसे मनःपरीय ज्ञान कहते हैं। मनःपरीय ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा ने कितने द्रव्य तक को जानते हैं उसकी बात, जघन्य रूप से एक समय में होने वाले औदारिक शरीर के निर्जरा रूप द्रव्य को जानता है, वहां है शब्द जानना। क्या कहना चाहते हैं? ये औदारिक शरीर की निर्जरा तो हमने कभी सुनी नहीं थी, कर्म की निर्जरा तो सुनी थी, है ना? हर समय में एक समय प्रबद्ध अनंत कर्म परमाणु जीव ग्रहण करता है और अनंत कर्म परमाणु छोड़ता है, ये तो हमें मालूम है। वैसे ही अभी औदारिक शरीर ने जो मनुष्य और तिर्यंच औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं, कब? जब भी जन्म, हर समय, यानी पर्याय का ये शरीर ग्रहण करने के पहले समय से लेकर, विग्रह गति से आया, रुजुमति वाला आया तो उसी समय से उसने ग्रहण चालू किया। तो जब शरीर के परमाणु ग्रहण किए, तो ग्रहण किए तो उसकी निर्जरा भी चालू हो गई। अनंतानंत परमाणु ग्रहण करते हैं तो कुछ तो उसी समय से निर्जरा चालू होती है और कुछ अंतिम समय में, मृत्यु के समय में उसका लास्ट लॉट चला जाता है। एक समय में ग्रहण किया हुआ, दूसरे में समय में ग्रहण किया हुआ उसकी भी निर्जरा चालू ही हो जाती है और उसका भी अंतिम लॉट मरण के समय में। और हर समय में कितने परमाणु निर्जरित हो गए उसका भी हिसाब है। फिर भी सभी का मिलकर, यानी कोई पहले समय में ग्रहण किया, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, अभी एट एनी गिवन स्टेज, अभी हमारी अपनी बात करते, तो अभी हमने जन्म से लेकर बहुत सारे जो हर समय लिए थे उसमें से हर एक का एक एक निषेक अभी खिल रहा है, तो उसका प्रमाण कितना है? तो उसको कहते हैं एक रहेगा ही, ही। उस सब, हाँ, उसमें से कुछ कुछ ही निकलते हैं और उसका हर एक का एक जरूर ही रहेगा, अंत समय में ही जाएगा, ये उसका नियम है। अंतिम समय में, क्योंकि ये तो जो अंतिम समय निश्चित है, जैसे आयु का अंतिम समय, कर्म आयु कर्म का अंतिम समय निश्चित है, वैसे शरीर के हर परमाणु का, यानी जो जो लॉट ग्रहण किया है उसका अंतिम समय भी निश्चित है, उसका कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है, एक ही है। हाँ, तो ये आयु एक समय में भी नहीं बढ़ेगी, आयु कर्म में कुछ इंजेक्शन देके बढ़ाओ मगर ये शरीर सुनने वाला नहीं है। देखो, कर्म तो अनेक भवों तक चलते हैं, परंतु हाँ नो कर्म औदारिक शरीर की बात चल रही है। ये पहले समय में ग्रहण किए और उसकी जो, अभी हम छोटी लाइफ स्पैन लेते हैं, यहाँ तक उसका अंतिम समय है, या अंतिम समय में इतने खिरे उसके, ये पहले समय में ऐसी त्रिकोण जैसी रचना होती है, पहले समय में ज्यादा खिरते हैं, बाद में कम हो चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा? दूसरे तीसरे ऐसे ही हो गए। अब हम यहाँ की बात करते, यहाँ तक जीव आया, यहाँ उसने जो ग्रहण किए उसका भी पहला समय है ये है, अंतिम समय ये है, हर एक की अंतिम स्थिति उतनी है। अभी इसने कितने ग्रहण किए, समझो इतने 100 साल के ग्रहण किए थे, तो इसकी अंतिम स्थिति 100 साल थी। इसने कितना ग्रहण किया, अभी 50वें साल में ग्रहण किया, तो इसने 50 साल की इसकी स्थिति है, यानी जो आयु की अंतिम स्थिति है उतनी इसकी अंतिम स्थिति है। अब यहाँ जो 10 साल बाकी रहे मान लो, वो जो ग्रहण किए थे ये उसकी अंतिम लिमिट है, यानी सबकी मिलकर अंतिम लिमिट एक ही है। मरण के समय आपको दिख रहा है, मरण के समय ये सब मिलकर खिर जाएंगे एक साथ, तो रेस्पिरेटर पर रखेंगे या अमेरिका ले जाएंगे तो बचेंगे कि नहीं? अरे इसकी अगले समय की पर्याय निश्चित है कि नहीं है? पुद्गलों की, हमने उसको मय रूप मान लिया और हम उसको यहाँ टिकाना चाहते हैं, वो भले टिका रहेगा यहाँ फ्रिज में रखो, मगर हम चले जाएंगे इसको छोड़कर, हमारा उसका कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है, ख्याल है ना?
ये ऐसा है, पर पदार्थों के प्रति इतना ममत्व है, ये इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल हमें मिलता है। इजिप्ट में जो ममीज रखी है ना,
हाँ।
वो क्या है, ये मेरा राजा, ये मेरा राजा, बचाओ उसको।
अभी शरीर रुक रहा है, उसका जीव तो कहाँ, कितने भव चला गए, कितने भव बदले हो गए।
अरे उस शरीर में कितने जीव पैदा हो गए होंगे, उसका कोई हिसाब है क्या?
तो ये जो प्रत्येक समय में, अभी हमने देखा था, अलग अलग समयों में ग्रहण करता है, फिर भी सबका मिलकर विशिष्ट समय में विशिष्ट इतना सब निर्जरा होती है। जैसे ग्रहण होता है हर समय में, वैसे हर समय में निर्जरा चालू है। शरीर के अनंत अनंत परमाणु लेते हैं हम नए, और अनंत अनंत पहले वाले छोड़ देते हैं। जैसे नदी हमको वैसे की वैसे दिखती है, फिर भी वो नया नया पानी आता है और पुराना पुराना आगे बहता चला जाता है ना। वैसे हम तो रोज आईने में देखते हैं, हाँ अच्छा है, वैसा ही कल जैसा ही दिख रहा है हमको। आईना कल जैसा, हम बदले हो गए। तो ये अनंतानंत परमाणु नए नए आते, पुराने चले जाते हैं, और हम यहाँ बर्थडे मनाते रहते किसका। फिर भी मन परे ज्ञान वो ज्यादा विशुद्धि वाले से वाले को होता है, और उसका विषय भी सूक्ष्म है, ज्यादा सूक्ष्म है। घटता होता है। मृत्यु नजदीक आती जाती है, और हम तो आनंद बनाते रहते हैं। हाँ, विशुद्धि ज्यादा है, अधिक विशुद्धि वाले को मनोपरी ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान तो सामान्य से कुअवधि भी हो सकता है, हमने देखा था ना, मिथ्या तो गुणस्थान से अवधि ज्ञान चलता है। अभी जो पावरफुल वाला अवधि ज्ञान होता है वो मुनियों को होता है, और मनोपरी ज्ञान उसमें भी विशिष्ट मुनियों को होता है, जहाँ विशुद्धि बहुत बढ़ती है, वितरागता ज्यादा है, और उसके कारण से जो विशुद्धि ज्यादा बढ़ती है तो वहाँ मनोपरी ज्ञान प्रकट होता है, और उसका विषय सूक्ष्म है। बच्चे वो बात आएगी इसमें शायद, क्योंकि कोई प्रश्न भी उठा है, कोई कहेगा कि अवधि ज्ञान ही ज्यादा पावरफुल, आपके प्रश्न सब इसमें लिए जाते हैं। वो अवधि ज्ञान से जाना है उन्होंने कि अश्विन भाई को ये प्रश्न उठने वाले हैं। देखो, दूसरों के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को उस मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनोपरे ज्ञान कहते हैं। मनपरे ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा जघन्य रूप से एक समय में होने वाले औदारिक शरीर के निर्जरा रूप द्रव्य को जानता है। एक समय में जो एक समय प्रबद्ध है, अनंतानंत औदारिक शरीर के परमाणु खिरेंगे, उसका जो समय प्रबद्ध है उसको वहाँ तक, ये तो जघन्य वाले की बात है। और उत्कृष्ट रूप से कारमाण द्रव्य के अर्थात आठ कर्मों के एक समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध रूप द्रव्य के अनंत भागों में से एक भाग को जानता है। क्या कहते हैं, औदारिक शरीर की जितनी निर्जरा होती है और कारमान द्रव्य की जितनी निर्जरा या समय प्रबद्ध जो है, तो कारमान समय प्रबद्ध में अनंतानंत परमाणु है, परंतु वो सूक्ष्म स्कंद है। औदारिक शरीर का स्कंद स्थूल है, समझो ये इतना स्कंद है, तो उसमें औदारिक के परमाणु कम है और कारमाण के परमाणु उससे अनंत अनंत गुणे हैं, ख्याल है, उसका सूक्ष्म परिणमन है। और जितना कारमाण का एक समय प्रबद्ध है उसके अनंत वे भाग तक को जानता है। यहाँ लिखा देखो, उत्कृष्ट रूप से कारमाण द्रव्य के यानी आठ कर्मों के एक समय में बंधे हुए, उसको कहते हैं समय प्रबद्ध, यानी जो कारमाण का समय प्रबद्ध है उस द्रव्य के अनंत भागों में से एक भाग को जानता है, ने उसके अनंत वे भाग तक को जानता है। कारमाण का समय प्रबद्ध का अनंतवा भाग वहां तक को जानता है। अब क्षेत्र की अपेक्षा कहां तक जानेगा, तो जघन्य रूप से गव्योति पृथक्त्व यानी 2-3 कोस क्षेत्र को जानता है। जघन्य मन परे ज्ञानी 2-3 कोस तक को जानेगा, वहां तक जो जीव तिष्ठते हैं उनके वर्तमान के विचार, पूर्व के विचार, भविष्य के विचार, या वे जीव भविष्य में कौन सा विचार करेंगे या पूर्व भव में क्या विचार किया था उसको भी जानेंगे। गव्युति पृथक्त्व का ही अर्थ है 2-3 कोस। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हीं को जाने, उस क्षेत्र के अंदर तिष्ठने वाले जो जीव है उनके मन में जो चलेगा या उन जीवों को भविष्य में चलेगा, ऐसी बात होगी। हाँ, अभी जो उत्कृष्ट जो है, उत्कृष्ट मन परे ज्ञानी जो है वो उत्कृष्ट रूप से मनुष्य क्षेत्र के भीतर जानता है, मनुष्य क्षेत्र के बाहर नहीं। मनुष्य क्षेत्र कितना बड़ा है? हाँ, 2.5 द्वीप यानी 45 लाख योजन। अभी यहाँ पर उसकी एक नोट दी उन्होंने, यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र से प्रयोजन विष्कम्भ रूप मनुष्य क्षेत्र से है, वृत्त रूप मनुष्य क्षेत्र से नहीं। इसका अर्थ क्या है? हाँ, सर्कल और विष्कम्भ है ना, क्या सर्कल? हाँ हाँ, और आप उल्टा बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा उल्टा करो। विष्कम्भ है ने सेट, हाँ, और वृत्त है ने गोल। मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन है, तो 45 लाख योजन हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि इसका डायमीटर 45 लाख योजन है, और 45 लाख योजन इसको भी कह सकते हैं, ये भी 45 लाख योजन है। 45 लाख योजन चौकोर भी हो सकता है और गोल भी हो सकता है। हाँ, जानेगा। हाँ, फिर भी वहाँ जाएंगे, इसीलिए लिखा। डायमेंशन कहाँ खत्म हो गई? 45 लाख की डायमेंशन। हाँ हाँ, तो ये कोनों तक को जानेंगे, वो कोनों में जो तिर्यंच देव स्थित है उनको जानेंगे। देखो, ये यही बात मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। देखो, यहाँ जो नरलोक यानी मनुष्य लोक ऐसा कहा है, पेज 568 है इसमें समय ज्ञान चंद्रिका में, नरलोक ऐसा यहाँ वचन कहा है, सो यहाँ मनुष्य लोक का विष्कम्भ का जेता परिमाण है सो लेना। विष्कम्भ है ने वो उसकी परपेंडिकुलर ऐसे जो हाइट, यानी अभी यहाँ चौड़ाई कहेंगे हम, चौड़ाई लेना हम 45 लाख योजन चौड़ाई लेना उसकी। और मनुष्य लोक तो गोल है, ख्याल है ना? और यहाँ मनुष्य लोक का विष्कम्भ लेना यानी इसका जो डायमीटर है उतना माप तो हमने 45 लाख लेना, परंतु 45 लाख का गोल नहीं लेना। मनुष्य लोक तो गोल है। और यहू विपुलमति का विषयभूत, विपुलमति क्यों कहा? हम ये उत्कृष्ट ज्ञान की बात कर रहे, विपुलमति उसको कहते। रुजुमति यानी वो मन परे वाले के दो भेद है, रुजुमति और विपुलमति। विपुलमति ज्यादा पावरफुल है, तो उसमें उत्कृष्ट भेद कौन सा है, कितने तक जानता है? तो 45 लाख योजन तक। तो देखो, फिर सुनना, विपुलमति का विषयभूत क्षेत्र समचतुरस्त्र घन प्रतर कहिए। क्या कहा अरविंद भाई? घन प्रतर है ने क्या? हाँ, 45 लाख इंटू 45 लाख, ये तो प्रतर हुआ, और ऐसा भी 45 लाख करो, ये घन हो गया। हाँ, तो घन प्रतर कहिए, समान चौकोर घन रूप प्रतर क्षेत्र 256 पेज सम्यक ज्ञान चंद्रिका में से मैं पढ़कर सुना रही हूँ। जीव कांड है 145 लाख योजन लंबा तितना ही चौड़ा ऐसा परिमाण जानना, यहाँ ऊंचाई थोड़ी है तातई घन प्रतर कहा। अच्छा, ऐसा ऊंचाई 45 लाख नहीं लेना, अकेला 45 लाख बाय 45 लाख इसको प्रतर कहते हैं, और हाइट में 45 नहीं लेना, थोड़ी ही लेना, इसलिए घन प्रतर कहा। अकेला प्रतर नहीं है परंतु थोड़ी हाइट है इसलिए घन प्रतर कहा। चौड़ाई में तो चौकोर है, गोल नहीं है, और थोड़ी हाइट ले लेंगे इसमें तो ये इसको घन प्रतर कहा। नहीं, कितने हाइट की बात यहाँ नहीं लिखी है, देखो फिर दोबारा पढ़ रही हूँ। नरलोक ऐसा वचन कहा है सो यहाँ मनुष्य लोक का विष्कम्भ का जेता परिमाण है सो लेना, यानी वो जो डायमीटर है उसका प्रमाण लेना, परंतु डायमीटर लेके गोल नहीं करना, डायमीटर उतना 45 लाख योजन का लेकर उसका चौकोर करना, चौकोण करना। और मनुष्य लोक तो गोल है, और यहू विपुल मति का विषयभूत क्षेत्र समचतुरस्त्र घन प्रतर कहिए। समचतुरस्त्र ने वो बराबर इक्वल है चारों भाग। हाँ, ऊपर उसका जाना नहीं है। तो ये घन प्रतर है, समान चौकोर घन रूप प्रतर क्षेत्र क्या है। सो 45 लाख योजन लंबा, 45 लाख योजन चौड़ा, और ऊंचाई थोड़ी है, थोड़ी लिखे इसलिए वो प्रतर रूप ही कहा, थोड़ी है उसकी, ताते घन प्रतर क्या है। जाति मानुषोत्तर पर्वत के बाह्य चारों कोणानी विषय तिष्ठते देव तिरियंच चिंतते हुए तिनी को भी उत्कृष्ट विपुलमति मनपरे ज्ञान जाने हैं। यहाँ पर जो कुछ मानुषोत्तर पर्वत, यहाँ मानुषोत्तर पर्वत है, और यहाँ पर जो कोई तिरियंच या देव है उनके मन में, खाली मनुष्यों के मन की बात नहीं है, मन किसको किसको होगा, तो उनको उनके भी मन की बात जानेंगे वे। चिंते तीन को भी उत्कृष्ट विपुलमति मन परे ज्ञान जाने हैं, ऐसे क्षेत्र प्रति जघन्य उत्कृष्ट भेद कहे। ये हो गया ना, कोष हमने देखा था ना, चार कोष का एक योजन कहा था ना, ये अपने माइल में वो 2 माइल 4 माइल ऐसा कोष लिखते हैं। देखो 2000 धनुष का एक कोष होता है, 2000 धनुष का एक कोष, और 4 कोष का एक योजन, यानी योजन के चौथे भाग को कोष कहते हैं। और वो प्रमाण योजन अगर लेना है हाँ, तो वो 500-500 गुना करना, कोष भी बड़ा होगा, योजन भी बड़ा होगा, सब। देखो यहाँ मनुष्य क्षेत्र से विष्कम्भ रूप, अब काल एक क्षेत्र की बात बता दी, अब काल की बात करेंगे। काल की अपेक्षा क्या प्रश्न है, अभी काल की बात करेंगे। काल की अपेक्षा जघन्य रूप से 2-3 भवों को ग्रहण करता है, यानी जघन्य में जघन्य भी 2-3 भवों तक को, उस जीव के 2-3 भवों तक वो क्या सोचेगा, सोचा था वगैरह जानेगा, और उत्कृष्ट रूप से असंख्यात भवों को ग्रहण करता है। भवों को ग्रहण करता है अर्थात जानता है, और भाव की अपेक्षा मन परे ज्ञान पहले निरूपण किए गए द्रव्य की शक्ति को जानता है। पहले किए गए द्रव्य ने अभी जो हमने कितना द्रव्य को जानता है, तो उसकी जो शक्ति है उसको भी जानेंगे। अब केवल ज्ञान की बात हो रही है। जो अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायों सहित संपूर्ण द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य काल के पर्यायों सहित सभी द्रव्यों को, स्व पर सभी द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, युगपद एक समय में जानते हैं। ऐसा क्रम से नहीं कि ये पहले मैं इसको जानूं, फिर इसको जानूं, फिर इसको जाने, ऐसा नहीं है। सबको एक साथ यानी युगपद जानते हैं, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर क्या अभिनिबोधिक प्रमाण से प्रयोजन है, क्या श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है, क्या अवधि प्रमाण से प्रयोजन है, क्या मनोपर्याय प्रमाण से प्रयोजन है, अथवा क्या केवल प्रमाण से प्रयोजन है। इस तरह सबके विषय में पृच्छा यानी प्रश्न पूछना चाहिए, पृच्छा करनी यानी प्रश्न पूछना, पृच्छा करनी चाहिए। और इस तरह पूछे जाने पर आचार्य स्वयं ही कहते हैं कि हमने पांच प्रकार के भाव प्रमाण बताए, तो आप पूछो हमसे कि यहाँ किससे प्रयोजन है। मति भाव प्रमाण से यानी अभिनिबोधिक से प्रयोजन है, तो श्रुत भाव प्रमाण से प्रयोजन है, कि अवधि भाव प्रमाण से प्रयोजन है, कि मनोपर्य भाव प्रमाण से प्रयोजन है, कि केवल भाव प्रमाण का प्रयोजन है, किसका प्रयोजन है, किससे प्रयोजन है। तो कहते हैं इस तरह पूछे जाने पर, अभी हम बताते हैं, आचार्य कहते हैं यहाँ पर न तो अभिनिबोधिक प्रमाण से प्रयोजन है, न अवधि प्रमाण से प्रयोजन है। किसको छोड़ा बीच में? हाँ फिना, किसको छोड़ा? मति ज्ञान के बाद किसको लिया था हमने? हाँ, तो श्रुत भाव प्रमाण को यहाँ छोड़ा है। न अवधि प्रमाण से प्रयोजन है, न मनोपर्याय प्रमाण से प्रयोजन है, किंतु अब यहाँ केवल को भी नहीं लिया, श्रुत को भी नहीं लिया, किंतु ग्रंथ की अपेक्षा श्रुत प्रमाण से और अर्थ की अपेक्षा केवल प्रमाण से प्रयोजन है। क्योंकि मूल अर्थकर्ता हमारे केवल ज्ञानी भगवान है, उन्होंने बताया हुआ है, वो केवल प्रमाण से शुरू हुआ है। और ग्रंथ रचना में श्रुत ज्ञान से ग्रंथ की रचना है, श्रुत रूप है वो, तो यहाँ श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है। तो ग्रंथ की अपेक्षा श्रुत प्रमाण से और अर्थ की अपेक्षा केवल प्रमाण से। भाव की बात है, भाव प्रमाण की बात है, क्योंकि हमने ग्रंथकर्ता जब देखे थे, ये कौन है, कर्ता कौन है इसके, तो हमने अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता ऐसे दो भेद किए थे। वैसे यहाँ प्रमाण में भी श्रुत प्रमाण और केवल प्रमाण ऐसे दो भेद लिए उन्होंने, तो उसमें भी अर्थ की अपेक्षा केवल प्रमाण और ग्रंथ की अपेक्षा श्रुत प्रमाण लिखा। ऐसा उत्तर देना चाहिए, यानी ऐसा उत्तर है या हमें ही बता दे। अब यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गणना करने पर, ये शब्द सुना था कहीं हमने, पूर्वानुपूर्वी, अनुपूर्वी। अनुपूर्वी किसका भेद था? 73 पेज पर देखना। हाँ, उपक्रम का भेद था वो। अनुपूर्वी हमने तीन प्रकार की देखी थी, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी। तो पूर्वानुपूर्वी ने क्या, शुरू से आखिर तक क्रम से कहना, उसको कहते हैं पूर्वानुपूर्वी। आखिर से उल्टे क्रम से शुरू तक जाना, उसको कहते हैं पश्चादानुपूर्वी। और बीच में कहीं से भी कथन करना, उसको कहते हैं यथा तथानुपूर्वी। तो यहाँ क्या क्या प्रश्न, क्या आपका? हाँ हाँ देखो देखो, पहले अर्थ प्रमाण की अपेक्षा ख्याल में आया, ये ग्रंथ की रचना किसने की है, मूल कर्ता कौन है, अर्थकर्ता कौन है, ये सब बताने वाले कौन है, तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान ही ने बताया है, तो केवल ज्ञान प्रमाण है और उनसे ये ग्रंथ की उत्पत्ति हुई है, बराबर। तो उसको अर्थ की अपेक्षा केवल ज्ञान को लिया है, केवल प्रमाण लिया, केवल प्रमाण। अब ग्रंथ की रचना किसने की, 70 गणधरों ने उसको सुना और उसको फिर रचना की, तो उसको हम श्रुत कहेंगे, तो उसको श्रुत प्रमाण का ख्याल है ना। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं, देखो 97 पेज पर, यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गणना करने पर, पूर्वानुपूर्वी से गणना यानी शुरू से अंत तक गणना करने पर, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की अपेक्षा तो दूसरे श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है। इसका अर्थ क्या है, हमने भाव प्रमाण 5 देखे थे, पहला आविनिबोधिक प्रमाण, फिर श्रुत प्रमाण, तीसरा अवधि प्रमाण, चौथा मन पर्याय और पांचवा केवल प्रमाण। तो श्रुत प्रमाण का नंबर कौन सा था, दूसरा था, इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं, पूर्वानुपूर्वी से गणना करने पर, यानी पहले से अंत तक अगर हम गणना करेंगे तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की अपेक्षा तो दूसरे श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है। यहाँ खाली श्रुत प्रमाण कहा, उसमें द्रव्य और भाव ऐसे भेद नहीं किए, तो ये दूसरा पूर्वानुपूर्व, पहले से अगर हम गिनते हैं तो इसका नंबर दूसरा है, और अर्थ की अपेक्षा पांचवे केवल ज्ञान प्रमाण से प्रयोजन है। ये ख्याल आया, श्रुत प्रमाण सेकंड स्थान पर है और केवल प्रमाण पांचवे, और हम यदि पश्चातानुपूर्वी से विचार करेंगे तो केवल ज्ञान, वो केवल प्रमाण पहले नंबर पर आएगा और श्रुत प्रमाण चौथे नंबर पर। बराबर समझ में आता है, आसान है ना। आगे लिखा है, देखो पश्चातानुपूर्वी से गणना करने पर द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की अपेक्षा चौथे श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है, और अर्थ की अपेक्षा प्रथम केवल प्रमाण से प्रयोजन है। यानी वो शुरू से गिनते हैं कि आखिर से गिनते हैं, उसके अनुसार उसको नंबर दिया जाएगा। जैसे हमारा अभी पांचवा काल चल रहा है, तो ये पूर्वानुपूर्वी से है कि पश्चातानुपूर्वी से है, हाँ, क्योंकि हम अवसर पीढ़ी के पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच ऐसा गिन रहे। अभी हम उत्सर पीढ़ी में जाएंगे तो ये पांचवे काल को कौन सा कहेंगे, दूसरा कहेंगे, ख्याल है ना। वो पश्चातानुपूर्वी, छठे को पहला कहेंगे, पांचवे को दूसरा कहेंगे। वैसे यहाँ पश्चातानुपूर्वी से केवल ज्ञान को हम, यानी केवल प्रमाण को पहले स्थान पर लिखेंगे और श्रुत प्रमाण को चौथे स्थान पर गिनेंगे। अब यथा तथानुपूर्वी से गणना करने पर श्रुत प्रमाण और केवल प्रमाण इन दोनों से प्रयोजन है, उनको कोई नंबर दे ही नहीं सकते, हमने कहीं से भी चुन लिया है तो हम ऐसा ही कहेंगे, श्रुत प्रमाण है और केवल प्रमाण है। श्रुत ज्ञान यह सार्थक नाम है। अब उसका श्रुत ज्ञान का, यहाँ श्रुत ज्ञान प्रमाण और अर्थ प्रमाण, हमने ये दो बातें की ना, एक तो श्रुत प्रमाण है और केवल प्रमाण है। अब यहाँ श्रुत प्रमाण की बात चलेगी, तो श्रुत ज्ञान यह सार्थक नाम है, वह अक्षर पद संघात और प्रतिपत्ति आदि की अपेक्षा संख्यात भेद रूप है और अर्थ की अपेक्षा अनंत है। हमने देखा ये श्रुत के अक्षर वो भी लिमिटेड है, ये तो स्वर और व्यंजन तो ऐसे हम टोटल गिनेंगे तो 64 होते हैं सब मिलकर, और भी कुछ अक्षर होते हैं उसमें, और उसके कॉम्बिनेशंस रूप देखेंगे तो वो 31 - 1 कितने हो जाते हैं, फिर भी वो संख्यात है। पद यानी उसके वर्ड, वो भी संख्यात है, और पदों के समूह से संघात बनेगा वो भी संख्यात है, और अनेक संघातों का एक प्रतिपत्ति होगा आदि, यानी ऐसे 20 भेद है श्रुत ज्ञान के, ये सभी संख्यात होंगे। और अर्थ की अपेक्षा उन शब्दों के द्वारा जो अर्थ बताया है, जो भाव बताया है, अभी जीव शब्द आया, कितनी संख्या बताई जीव शब्द ने, अनंत जीव होते हैं, तो अर्थ की अपेक्षा ये उसके अनंत है। अब वक्तव्यता बताते हैं, तीन वक्तव्यताओं में से, देखो ये जो श्रुत प्रमाण है उसके ऊपर ये सब लगा रहे, क्या लेना, श्रुत प्रमाण पर पहले अनुपूर्वी लगा के बताई उन्होंने, श्रुत प्रमाण का नाम बताया। 73 पेज निकालना, उसमें हमने कौन कौन से देखे, कोई भी उत्पत्ति होती है, अवतार होता है, तो उसमें हमने पहले वो चार बातें बताई थी, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। अभी उसमें उपक्रम में भी क्या होता है, पहले अनुपूर्वी बताई जाती है, फिर नाम, फिर प्रमाण वगैरह वगैरह, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, वैसे उसमें पांच भेद। तो अभी इसमें उन्होंने अनुपूर्वी बताई, नाम उसका सार्थक है वो भी बताया, अभी जो श्रुत प्रमाण है वो कितना है, तो अक्षर वगैरह की अपेक्षा से संख्यात है और अर्थ की अपेक्षा अनंत है, वो भी उसका प्रमाण बता दिया। वक्तव्यता में इसमें क्या बताया जाए, इसका विषय क्या है, उसकी बात करेंगे। तीन वक्तव्यताओं में से श्रुत प्रमाण की तदुभय वक्तव्यता जानना चाहिए। तदुभय ने स्व समय और पर समय दोनों का वर्णन करेंगे, और उसमें से स्व पर समय कैसा खोटा है, स्व समय सच्चा है उसका, यानी पर समय का निराकरण करेंगे, खंडन करेंगे, तो इसको कहते हैं तदुभय वक्तव्यता जानना चाहिए। ये सब पहले जीव स्थान पर ये सब भी लगाए थे, उपक्रम भी लगाया था, नाम भी लगाए थे, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार वगैरह सब। अब ये श्रुत प्रमाण पर ये पांचों लगा रहे, ख्याल है ना, श्रुत प्रमाण में क्या क्या बात है उसकी बात यहाँ चल रही है। तो ये श्रुत प्रमाण का जो अर्थाधिकार है वो दो प्रकार का है। श्रुत प्रमाण का अर्थाधिकार यानी जो कुछ द्रव्य श्रुत हमें अवेलेबल है उसमें कितने अधिकार है, तो दो मुख्य बताएंगे, दो अर्थाधिकार है। तो उसमें से पहला है अंग बाह्य और दूसरा है अंग प्रविष्ट, जिसको हम 12 अंग कहते हैं, यानी अंग और अंग बाह्य कहो, अंग प्रविष्ट कहो या अंग कहो, एक ही बात है। अंग प्रविष्ट यानी अंग में जो है वो, और अंग बाह्य यानी जो 12 अंग के बाद जो कुछ रहते हैं बाकी, और वहां जो कुछ रचनाएं हैं उसको अंग बाह्य कहते हैं। इसी का दूसरा नाम प्रकीर्ण कैसा भी है, 14 प्रकीर्ण कहते हैं उसको। तो भी इसकी बातें हम ये बताएंगे। यहाँ देखो, उन दोनों में से अंग बाह्य के 14 अर्थाधिकार है, यानी उसमें 14 अधिकार है, अर्थाधिकार कहो या अधिकार है, 14 अलग अलग उसमें शास्त्र है कहेंगे हम अपनी भाषा में। देखो जितने टोटल पद वगैरह है, तो उसमें हमने देखा था एक एक पद में कितने होते हैं, फिर वगैरह वगैरह उसकी बात हमने की थी। तो जो फुल फिगर आती है उसमें से ये तो अंगों की रचना हुई, और कुछ ऐसे अलग पद रह गए एक्स्ट्रा, तो उसमें से अंग वायुओं की रचना हुई है। तो अंग वायुओं में 14 जो अभी हम नाम सुनने जा रहे हैं उसका विषय भी बताएंगे। तो ये तो मुनियों के आचारों की अपेक्षा से, उसके जो आचार होते हैं उसकी अपेक्षा ये 14 शास्त्र है, इनको कहते हैं अंग बाह्य। और 12 जो अंग है, हम हमेशा जो द्वादशांग कहते हैं वो 12 अंग, और उसके विषय उसकी बात बाद में करेंगे। तो श्रुत के दो मुख्य भेद अर्थाधिकार, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य में फिर 14 अर्थाधिकार, यानी उसमें 14 भेद और, उन भेदों की अभी बात करते हैं। वे इस प्रकार है, यानी अंग बाह्य कौन कौन से 14 है उसके नाम यहाँ लिखे हैं। सामायिक, चतुर्विंशति, स्तव। देखो सामायिक में सामायिक संबंधी वर्णन आएगा, उस शास्त्र का नाम भी सामायिक है, और जो हम करते हैं एक्चुअल वो भी सामायिक होगा, ख्याल है ना। चतुर्विंशति स्तव किया जाता है, 24 तीर्थंकरों की जो स्तुति वगैरह की जाती है, और वो कैसे करने, वो जिसमें लिखा है उस शास्त्र का नाम भी चतुर्विंशति स्तव है। तो पहले का नाम है सामायिक, दूसरा चतुर्विंशति स्तव, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, यानी प्रतिक्रमण की विधि, किसको करना, कब करना, क्या क्या उसमें वेरिएशंस है, उसमें कितने प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं, ये सब उसमें लिखा जाएगा उस शास्त्र। वास्तव में करते हैं ने क्या भाव प्रतिक्रमण, तो अंतरंग लीनता वाला होगा वो। हाँ, ये आगम हम कहेंगे उसको, आगम प्रतिक्रमण कहेंगे, आगम प्रतिक्रमण, क्योंकि द्रव्य में भी वो निक्षेप लगाएंगे, निक्षेप द्रव्य निक्षेप लगाएंगे, तो उसमें आगम नो आगम दो चलेंगे फिर आगे। प्रतिक्रमण की बात आगे आएगी।
जो आप कहना चाहते हैं कि ये इसका कौन सा प्रतिक्रमण कहना चाहिए, जो भाव प्रतिक्रमण होगा वो भाव प्रतिक्रमण करते समय बोल सकेगा क्या?
नहीं, वो बोलने की बात नहीं करनी।
वही तो फिर वो तो भाव प्रतिक्रमण की बात ही नहीं होगी ना, वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और ना उसका कोई कथन कर सकते हैं,
वो तो अंतरंग लीनता ही है।
तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से ये द्रव्य प्रतिक्रमण, मतलब द्रव्य श्रुत जिसको कहेंगे वो इसमें आएगा।
जिसको हमने छह निक्षेपों की भाषा में क्या कहा था हमने उसको, आप जिसको द्रव्य प्रज्ञा शास्त्र को क्या कहते हैं हम, वहाँ वो आगम कहेंगे ना, हमने व्यवहार आगम कहा था उसको। निश्चय आगम तो वो जानने वाला जीव लिखा, प्रतिक्रमण शास्त्र को जानने वाले जीव को हम निश्चय आगम कहेंगे, आगम द्रव्य प्रतिक्रमण। हाँ, और ये व्यवहार वाला ये होगा व्यवहार आगम द्रव्य प्रतिक्रमण। हम ये 14 नाम पढ़ेंगे फिर, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, ये सभी मुनियों के जो आचार है उस संबंधी ये सब बातें हैं। कृतिकर्म, दशवैकालिक, अभी हरेक का अर्थ और उसमें क्या विषय है वो समझा रहे, अभी आगे समझाएंगे। उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कृपाकल्प, महाकल्प, ये कहीं कल्प्याकल्प भी लिखा है और यहाँ कल्पाकल्प लिखा है, इसी पुस्तक में अगले पेज पर कल्प्याकल्प भी लिखा है, कल्प्याकल्प, महाकल्प, अभी हम यहाँ लिखा है उसी को पढ़ेंगे। पुंडरिक, महापुंडरिक और निधिदिका, अब क्रम से इन 14 में क्या विषय है उसकी बात करेंगे। उनमें से सामायिक नाम का अंग बाह्य अर्थाधिकार, ये अर्थाधिकार के हमने भेद देखे थे, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य में से 14, उसमें से ये सबसे पहला सामायिक नाम का जो अधिकार है उसमें ये जो सामायिक अधिकार है वो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 6 भेदों द्वारा समता भाव के विधान का वर्णन करता है। यानी इसमें भी फिर कहेंगे नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक, ख्याल है ना, ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें आ जाएगा। हाँ, तो समता भाव, ये तो एक्चुअल सामायिक क्या है, समता भाव है, अंतरंग में स्थिरता है, उसका विधान है, उसका यहाँ वर्णन होगा। चतुर्विंशति स्तव अर्थाधिकार, उस काल संबंधी 24 तीर्थंकर, अभी हमारे कौन से 24 तीर्थंकर है, तो वृषभ से लेकर महावीर तक, अब अगले जो 24 आएगी तब जो होगे वो वहाँ के वो 24 तीर्थंकरों को वंदना करेंगे, तब के मुनि उन 24ों की वंदना करेंगे, उन 24ों की वो क्या कहते हैं स्तवन करेंगे, स्तवन जो है। तो चतुर्विंशति स्तव उसमें उस काल संबंधी 24 तीर्थंकरों की वंदना करने की विधि, उसकी भी विधि, अब उनके नाम यानी किसके, 24 तीर्थंकरों के नाम, उनके संस्थान यानी उनके आकार, सबका समचतुर्थ संस्थान ही होगा, परंतु अभी हम कहेंगे वृषभदेव कितने थे, वो 500 धनुष वाले थे, महावीर 7 हाथ के थे, ये उनके संस्थान होंगे। उच्छेद ऊंचाई, हाय, 5 महाकल्याणक, कौन कौन से तिथियों में हुए थे, कैसे हुए थे, वो सब बातें हुई होगी, गर्भ कल्याणक में उनकी माता कौन सी थी, क्या क्या किया, कैसे सपने आए, जन्म कहाँ हुआ, फिर दीक्षा कहाँ ली उन्होंने, सभी उसकी बातें। 34 अतिशयों के स्वरूप और तीर्थंकरों की वंदना की सफलता का वर्णन करता है, क्योंकि ये वंदना स्तव वाला है ना, तो क्यों करना, उससे क्या फल मिलेगा, उसकी भी उसमें बात आ जाएगी। मतलब मन परे ज्ञानी मन परे की आती होगी हाँ, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं करते। नहीं तीर्थंकरों की बात नहीं, तीर्थंकरों की बात नहीं ना, अभी गंधर है, अन्य आचार्य है, छठे से बारहवें तक है, अभी सातवें से बारहवें तक तो को उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो, उपयोग रूप नहीं है, उपयोग रूप छठे में है, उपयोग रूप तो छठे में ही है, तो छठे में भी दूसरे के मन की बात तो ज्यादा करके जानेंगे, उसकी रुचि नहीं है। हाँ हाँ, उपयोग लगाकर वो जानने की ऐसी कोई नहीं है, छठे में तो शुद्ध उपयोग नहीं है ना, तो छठे में वो तो जानेंगे भी, मगर ऐसी कहीं आए होगी बात तो आती होगी, यानी कोई हाँ, होगा भी उस अपेक्षा से।
प्रथमानुयोग में आप जैसा कहते हैं वैसे मनपरीय ज्ञान के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अभी इंस्टेंट आपको हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कथा में कैसा लिखा है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो मनपरीय ज्ञान है तो उसका यूटिलाइजेशन होगा ही होगा, इसीलिए तो उसका नाम लिया है ना, अगर सिर्फ वो रिद्धि होती और उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। अभी ऐसा भी है कि सब मुनियों को सब मनपरीय ज्ञान होते हुए भी उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा भी है और ऐसा भी है,
ज्यादा करके वैसा ही है, अधिकतर ऐसा ही है, क्योंकि कोई रिद्धि हो क्योंकि उसमें किसको रुचि है, दूसरे के मन की बात जानने में कोई रुचि नहीं उनको। हाँ
आगे चलो,
देखो अब ये वंदना नाम का जो अर्थाधिकार है वो एक जिनेन्द्र देव संबंधी और उन एक जिनेन्द्र देव के अवलंबन से जिनालय संबंधी वंदना के वंदना में चतुर्विंशति स्तव में 2400 तीर्थंकरों का स्तवन लिखा और वंदना में एक जिनेन्द्र भगवान और वो जो चैत्यालय है जिनालय है उसके वंदना के निरवध्य भाव सावध्य शब्द हमने सुना है, सावध्य ने क्या पाप और निरवध्य ने पाप नहीं है, इन्हें प्रशस्त राग जिसको कहते, तो निरवध्य भाव का अर्थात प्रशस्त भाव का वर्णन करता है, यानी वंदना के शुभ भाव का वर्णन करता है, पहले सामायिक रूप समता भाव का वर्णन करता है लिखा था, अब वंदना में वंदना रूप शुभ भाव का वर्णन करते हैं। अब आगे प्रतिक्रमण नाम का जो शास्त्र है अंग बाह्य श्रुत है उसकी वर्णन करें, उसका वर्णन करेंगे। हाँ वो पढ़ रही मैं अभी, ब्रैकेट में वो प्रतिक्रमण संबंधी बात लिखी है, तो प्रतिक्रमण कौन कौन से होते हैं उसकी बात यहाँ ब्रैकेट में पहले लिखती है। प्रमाद कृत यानी प्रमाद के निमित्त से दैवसिक आदि दोषों का निराकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण पीछे हटना, किससे पीछे हटना है, दोषों से पीछे हटना है, तो दोष लगे हैं, दोष क्यों लगे हैं, प्रमाद से लगे हैं। मुनि छठे में आते हैं वो प्रमत्त गुण स्थान है, तो प्रमाद के कारण जो वहां दोष हुए हैं तो उससे पीछे हटना यानी एक्चुअली सातवें में जाना ही उससे पीछे हटना है, परंतु वो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण भी होता है, ख्याल है ना, कि जैसे दोष जो लगे है उसका उच्चार आचार्य के पास करते हैं या मन में यानी बोल कर करते हैं और फिर दिन में मेरे ये दोष लगे हैं मैं उनका प्रायश्चित लेता हूँ, ऐसा बोला भी जाता है, वचन का भी वहाँ व्यवहार होता है, तो उसको कहते हैं प्रतिक्रमण, उसकी भी विधि होती है। तो दैवसिक यानी दिवस संबंधी जो दोष है उसका जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसको दैवसिक कहेंगे, रात्रि में जो कुछ दोष लगे उसका रात्रि के अंत में उसका जो प्रतिक्रमण कहेंगे उसको रात्रिक कहेंगे, वह दैवसिक रात्रिक पाक्षिक पक्ष 15 दिवस का होता है, तो हर 15 दिवस के बाद 15 दिन में जो कुछ दोष लगे हैं उसका प्रतिक्रमण करना उसको कहते हैं पाक्षिक, चातुर्मासिक यानी 4 महीने के अंत में चार महीनों में जो लोग दोष लगे हैं उसका प्रतिक्रमण करना, सांवत्सरिक, ये मालूम है सबको। हाँ, तो साल में एक बार। ऐरियापथिक यानी ईर्ष्या पूर्वक चलते हैं फिर भी जो कुछ दोष लगते हैं, जानबूझकर नहीं करते, जानबूझ करेंगे तो वो तो अनाचार होगा, परंतु फिर भी कुछ अतिचार लगते हैं, जानबूझ कर ये सोच समझ कर वो तो टालने का ही प्रयत्न करते हैं, फिर भी कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं ऐरियापथिक। और उत्तम आर्थिक, आयु के अंत में संलेखना ग्रहण करते हैं तब उत्तम, उत्तम शब्द से उत्तम शब्द शुरू, तो उत्तम यानी भव के अंत में जो किया जाता है, पूरे भव संबंधी जो प्रतिक्रमण किया जाता है, हाँ हाँ हाँ, संलेखना धारण करने पर मुनि पूरे आयु के लिए वो प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसको उत्तम आर्थिक कहते हैं। तो ये सात भेद है, इस तरह सात भेद है। अब ये जो प्रतिक्रमण नाम का अर्थाधिकार है वो दुष्मादि काल और छह सहनन से युक्त स्थिर तथा अस्थिर स्वभाव वाले पुरुषों का आश्रय लेकर इन सात प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन करता है। यानी काल की अपेक्षा ले ख्याल में रखकर, संस्थानों की अपेक्षा ख्याल में रखकर, सॉरी संस्थान नहीं, सहनन से। छह सहनन कौन से याद है? हाँ, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, फिर वज्र नाराज सहनन, नाराज अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता सुरुपाटिका, यानी असंप्राप्त असुरुपाटिका सहनन। इस तरह से ये छह सहनन है। छह सहनन से युक्त जीव सातवें गुणस्थान तक तो जा ही सकते हैं, यानी नीचे के तीन वाले तो जा ही सकते हैं, ऊपर से सेकंड और थर्ड वाले ग्यारहवें गुणस्थान तक जा सकते हैं, और वज्र ऋषभ नारा सहनन वाला तो कहाँ तक जाएगा? हाँ, मोक्ष प्राप्त करेगा। तो छह सहनन से युक्त स्थिर तथा अस्थिर स्वभाव वाले पुरुषों का आश्रय लेके, ये स्थिर अस्थिर नाम कर्म वगैरह है ना, वो स्थिर अस्थिर वाले, इन सात प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन करता है। यानी ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को ख्याल में लेकर जो प्रतिक्रमणों का अलग अलग स्वरूप होगा, तो उसका वर्णन ये प्रतिक्रमण नाम के शास्त्र में आता है। वैनयिक नाम का अर्थाधिकार, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, इस तरह इन पांच प्रकार की विनयों का वर्णन करता है। यानी अध्ययन करते हैं तो शास्त्र की विनय कैसी करनी चाहिए, ज्ञान विनय में सभी बातें आएगी, दर्शन विनय आदि ये सब बातें उसमें बताई जाएगी। कृति कर्म नाम का अर्थाधिकार, अरिहंत सिद्ध उपचार विनय, ने उनके तो जो कुछ आचार संबंधी जो हो गए उपचार विनय, यानी वो अन्य मुनियों के साथ भी कैसा बर्ताव करना, किसके साथ कहीं किसको वंदना, किसको नमोस्तु करना है, वो नहीं नहीं मुनियों की बात, अपने लिए माता पिता है, परंतु जो दीक्षित मुनि है तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना, उनसे कोई पहले दीक्षित है तो आते तो उठकर खड़े होना वगैरह वगैरह, और जब वंदना करते तो भी पीछे कैसे पकड़ना क्या, ये सब उसमें आता है, नमस्कार भी कैसे करना, ये सब उनकी विधि होती है। कृतिकर्म नाम का अर्थाधिकार, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु की पूजा आदि की विधि का वर्णन करता है। अब वैकालिक यानी विशिष्ट काल को विकाल कहते हैं, उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक कहते हैं। वे वैकालिक दश है, उन दश वैकालिकों का, दश वैकालिक नाम का अर्थाधिकार वर्णन करता है। अब हाँ, आगे की बातें हम फिर पढ़ेंगे, ये सात हमने भेद देखे, इसका हम पढ़कर फिर आगे हम बढ़ेंगे, अगले टाइम मिलेंगे। अब तो हम 16 तारीख को मिलने वाले हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो।